बहुत बहुत समय पहले भारत में एक बहुत बड़े विद्वान कवि हुए थे जिनका नाम था विद्यावाचस्पति। वो इतने वैरागी थे कि संसार में उनका रस नहीं था और इतने अपने आध्यात्मिक चिंतन और अध्ययन में खोए हुए थे कि बाह्य जगत में क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई खबर नहीं थी। उनके पिता ने जब उनसे कहा कि तुम्हारी शादी करनी है तो उनको जैसे कि पता ही नहीं क्या कहा और उन्होंने हाँ भी कह दिया। शादी हुई परंतु वो अपने लगन में मगन अपने उसी वैराग की स्थिति में स्थित। शादी हो गई, घर में पत्नी आई पर उन्हें खबर ही नहीं कि घर में पत्नी भी आ गई है और वो अपनी साधना में रत। कहा गया है 12 साल तक वो अपनी पत्नी के साथ रहे और उन्हें पता ही नहीं था कि घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी है। दिन रात चिंतन अध्ययन मनन साधना उग्र वैराग्य और उन्होंने ये संकल्प किया था कि 12 साल जब पूरे हो जाएंगे तो मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। 12 साल हो जाते हैं, अंतिम रात्रि वो जो पत्नी थी उनकी वो उनके लिए रोज भोजन बनाती है पर उसका भी एक नियम था कि वो नहीं चाहती थी कि अपने पति की साधना में विघ्न डाले। इसके लिए उसने भी स्वयं को इस तरह छिपा के रखा कि कहीं दिखाया ही नहीं कि मैं भी हूं। और वो तो अपनी वैराग में इतने मस्त थे कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं। एक दिन अंतिम रात्रि थी, सुबह सुबह 4 बजे उन्हें निकल जाना था संन्यास लेने। खाली वो एक किताब के लिए रुके हुए थे जो वो लिख रहे थे, किसी ब्रह्मसूत्र पर टिका। तो लिखते लिखते रात को दिया बुझ गया तो उनके पत्नी ने दिया जलाया और पहली बार उन्होंने देखा किसी स्त्री का हाथ जिसमें चुड़िया है। तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे देवी आप कौन हो? उसने बताया, हे नाथ मैं आपकी पत्नी हूं, आपने मुझसे शादी की थी 12 साल पहले और आप मुझे ले आए थे। तो उसको बड़ा दुख होता है, वो कहता है, ऐसे मुझे तो पता ही नहीं और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं, इतने साल तो तुम रही यहां पर। वो कहती, आज तो आपने देख लिया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। पर वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है क्योंकि आज तो सुबह सुबह मुझे निकल जाना है हमेशा के लिए। वो कहती है, आप जा सकते हो, आपको मैं नहीं रोकूंगी, आपने मेरे से जाने से पहले इतनी बात कर ली, इतना ही काफी है। और सुबह होती है और वो निकल कर चला जाता है, फिर कभी नहीं वापस आता है। परंतु जो किताब वो लिखता है, जो टीका ब्रह्मसूत्र पर उसने लिखी, उसका नाम उसने अपनी पत्नी के नाम से रख दिया था, भामती। पत्नी का नाम था भामती। आज लोग वाचस्पति को नहीं जानते परंतु भामती स्कूल ऑफ वेदांत को जरूर जानते हैं। जो भी शास्त्र पढ़ने वाले हैं उसमें भामती स्कूल ऑफ थॉट वेदांत की अपनी एक शाखा है, अद्वैत वेदांत की। तो यहां पर दिखाया है भारतीय स्त्री का चरित्र कितना श्रेष्ठ, कितना महान और कितना त्याग और कितना वैराग से परिपूर्ण है। जिसने कभी आवाज नहीं उठाई, 12 साल में चुप रही, ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे लाए हो, मेरी तरफ देखो, तो कुछ नहीं। और जाते समय भी रोका नहीं, कहा कि आपने मेरे से इतना बात कर ली, काफी है। ऐसे महान स्त्रियों के देश में भगवान आया और जब वो आया तो उसने ज्ञान का सारा कलश माताओं के और बहनों के सिर पर रख दिया, क्योंकि उनमें निहित त्याग है, छिपा हुआ वैराग है, समर्पण का भाव है। ऐसा समर्पण का भाव पुरुष में कभी नहीं हो सकता। पुरुष आक्रामक है, स्त्री अर्थात समर्पण। एक मुख्य कारण ये भी है कि स्त्रियों में जितना समर्पणता है, स्त्रियों में जितनी सहनशीलता है, उतनी पुरुषों में नहीं। इसलिए जब भगवान इस संसार में आए तो बहनों को आगे कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में किसी एक क्लास में एक भविष्यवाणी की थी। उनकी मृत्यु 1902 में हो गई। बाबा 1936-37 में आए। उन्होंने कहा था, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्म संदेश भारत से सारे विश्व में फैलाएगी। भारतीय नारी के लिए कहा था, श्वेत वस्त्र धारण करेगी और तब संसार जानेगा कि भारत अध्यात्म में गुरु है। भारत में जो अध्यात्म की संपदा है और किसी देश में और किसी राष्ट्र में नहीं है, और ये कार्य किसी धर्म गुरु के द्वारा नहीं, स्त्री के द्वारा होगा जो कि श्वेत वस्त्र धारण करेगी। ये भविष्यवाणी थी। भगवान संसार में आए, छोटी छोटी कन्याएं, इतना बड़ा भार यज्ञ का उनके सिर पर रख दिया, और कैसे उनको तैयार किया और कैसे उनको तपाया, कैसी साधनाएं की। संसार में हलचल चालू थी, दूसरा महायुद्ध, पार्टीशन, कुछ खबर नहीं बाहर क्या हो रहा है। और जिस जिस आत्मा ने अपने जीवन को इस महान कार्य में अर्पित किया, वो इस संसार में सबसे महान है। ब्रह्मा कुमार कहो या ब्रह्मा कुमारी जीवन, इससे बड़ी इस संसार में कोई डिग्री नहीं, इस संसार में इससे बड़ा कोई पद नहीं, इस संसार में इससे बड़ा कोई और जीवन नहीं। कोई तीर्थंकर, कोई शंकराचार्य, कोई इमाम, कोई पैगंबर, पयंबर, अवतार, एक ब्रह्मा कुमारी से बड़ा नहीं है। श्वेत वस्त्र पहने हुए हो, सफेद साड़ी डाली हुई हो, बाल खुले हो, हाथ में मुरली हो, तुम हो राज ऋषि, साकार महावाक्य है बाबा के। सफेद साड़ी पहनी हो, बाल खुले हो, हाथ में मुरली, तुम हो राज ऋषि। केवल खड़े रहना और सेवाएं चालू, क्योंकि ब्रह्मचर्य का और पवित्रता का ऐसा तेज संसार की स्त्रियों में कहा, जो विकारों की चक्की में पिस रही है, जिन्होंने उन विकारों में गोता खा लिया है, उन्हें क्या पता पवित्रता में कितना सुख है। तो ऐसी इस यज्ञ की जो भी बहनें हैं, दे सिट ऑन द हेड्स ऑफ वेदास, वेदों के सिर पर खड़ी है, ऐसा गायन है। एक पवित्र कुमारी वेदों के भी सिर पर खड़ी है, वेद भी उसको नतमस्तक उसके सामने होते हैं। गीत में सुना, पल पल है भारी, विपदा है आई, क्या ऐसी ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी कोई विपदा आ सकती है? क्या ऐसा यहां पर भी हो सकता है कि पल पल भारी हो जाए? जनक विदेह की पुत्री वैदेही, क्या ये सीता भी कभी दुखी हो सकती है? हां, हो सकती है, होना तो नहीं चाहिए, परंतु उसका भी अपहरण हुआ ऐसा शास्त्रों में दिखाया है। माना ऐसी कोई सीता थी नहीं, परंतु यादगार यहां का है। वो आत्मा रूपी सीता तो जरूर थी जिसका अपहरण हुआ और उसे रावण ले गया और उसे शोक वाटिका में बिठा दिया। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। एक संपूर्ण समर्पण करने वाली ब्रह्मा कुमारी जीवन में ऐसी वो कौन सी बातें हो जाती है जिससे रावण अपहरण कर लेता है, एबडक्शन, किडनैप कर लेता है? ऐसा क्या हो जाता है? कितना श्रेष्ठ जीवन, इतना महान जीवन, इतना पवित्र जीवन, इतना निर्विकारी जीवन, इतना निर्बंधन जीवन, उसमें भी रावण क्या कर लेता है? उठा कर ले जाता है। क्या होता होगा सीता के अपहरण की सात अवस्थाएं? ऐसी सात बातें हुई, उसके बाद में उसका अपहरण हुआ। कौन कौन सी सात बातें? सबसे पहली आकर्षण, स्वर्णिम मृग का आकर्षण। देखा मृग को और आकर्षण हुआ, देखा मृग को और लगा कि मुझे ये चाहिए। व्यक्ति का आकर्षण, वस्तु का आकर्षण, स्थान का आकर्षण, पद का आकर्षण, आध्यात्मिक मैत्री का आकर्षण, गिफ्ट्स का आकर्षण, लौकिक परिवार का आकर्षण। संसार छोड़ दिया, लौकिक परिवार छोड़ दिया, फिर भी उस घर की रोटी अभी भी याद आती है, उस घर के दाल और चावल अभी भी थोड़ा खींचता है। संन्यास में एक नियम होता है, यदि बीच में खाई है और सैनिकों को यहां से वहां जाना है, आर्मी में नियम होता है, तो वो लोग पुल बांधते हैं और पुल के ऊपर से चढ़ के इधर जाते हैं, और एक बार यहां आ गए तो पुल को काट देते हैं ताकि वापस जाने का अवसर ना हो, भाग कर जाने का कोई चांस ना हो। कट द ब्रिजेस, कट दी ब्रिजेस, इस संसार से उस संसार में आ गए, अब यहां आने के बाद क्या कर दो? पुल को काट दो ताकि वापस जाने का कोई अवसर ना हो। दूसरा नियम है ड्राउन द बोट, नाव को डुबो दो, इस किनारे से उस किनारे आए हो, बीच में पानी है, सागर है, इस किनारे पहुंचने के बाद नाव को डुबो दो अब, ताकि वापस उस किनारे जाने का कोई अवसर ना हो। तीसरा, थ्रो द लैडर, सीढ़ी को फेंक दो, इस सीढ़ी पर चढ़कर नीचे से ऊपर पहुंचे हो, ऊपर आने के बाद अब सीढ़ी को फेंक दो ताकि वापस नीचे जाने का कोई चांस ना रहे। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, ये नियम है समर्पित जीवन के। एक बार यहां से यहां आ गए, अब उस घर से कोई लेना देना नहीं। एक जगह पर एक बड़ी बहन बता रही थी इन छोटी बहनों का क्लास कराओ और इनको कुछ समझाओ, बात बात पर धमकी देती है, घर चली जाएंगे, इनको कुछ नहीं बोल सकते, कुछ बोल दिया तो नाराज उदास, तीन दिन मूड ऑफ, बात करना बंद, उन गलियों को छोड़ दिया है, फिर भी आकर्षण, फिर भी वो स्वर्णी मृग खींचता है, उधर हलचल तो इधर हलचल, उधर कोई बीमार तो इधर हलचल, उधर किसी बात की कमी तो इधर दिल में कुछ कमी, उधर अस्वस्थता तो इधर अस्वस्थता, उधर मृत्यु तो यहां उदासी, कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट एंड थ्रो द लैडर, वापस जाने का कोई चांस नहीं। व्यक्ति चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, बंधन है, कितनी भी सेवा करता हो, कितनी भी मदद करता हो, गाड़ी देता हो, जगह देता हो, आर्थिक मदद करता हो, हमारी थोड़ी कर रहा है, भगवान की कर रहा है, उसकी चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं हमें, उसके आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, बंधन होगा व्यक्ति, व्यक्ति वस्तु सेंटर की सारी वस्तुएं सबकी संभाल करना है, परंतु हमारी कुछ भी नहीं है। दो दिन पहले मुरली थी, ये सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, पढ़ी होगी आपने, पढ़ाई होगी, ये सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ये मत समझ लेना ये बिल्डिंग मेरी है, ये सेंटर मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये वस्तुएं मेरी है, मैं बॉस हूं, ऑफिसर हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, यहां संभालने के लिए दिया है, बैंक ऑफिसर सारे दिन भर पैसे गिनते रहते हैं, पर उसको अंदर पता रहता है ये पैसे मेरे नहीं है, उसकी सैलरी अपने आप मिलती है महीने के बाद, वैसे ये सारी वस्तुएं दी गई है, अपना आधिपत्य अधिकार नहीं जमाने जमा कर बैठना, आज तुम हो कल कोई और आ जाएगा, हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, मैं इसको चला रही हूं, अगर मैं चले जाऊं तो क्या होगा, अच्छा ही होगा, शायद तुम ही बाधा हो, जो दूसरा आएगा उससे तो सेवा बहुत बढ़ने वाली है, तुम्हारे ही वजह से रुकी हुई थी सेवा, और हम ये सोचते हैं कि मैं चला रहा हूं, अगर मैं चली जाऊं तो क्या होगा, और व्यक्ति यही सोचता है हर डिपार्टमेंट में, यह भी तो हो सकता है कि तुम ही बाधा बने बैठे हो वहां पर, व्यक्ति वस्तु स्थान पद, जो छोटी छोटी कन्याएं आ रही है, हमें क्या पता वो कौन सी साधनाएं कर रही है, करके आ रही है, जो छोटी छोटी कन्याएं आ रही है, हमें क्या पता पूर्व जन्म में कैसी भयंकर तपस्या की है, कैसी वैराग की अग्नि है उसमें, जिस संस्कार से 20 साल में हम मुक्त नहीं हुए उसमें वो संस्कार ही नहीं है, शायद हमसे ही अध्यात्म में कितना कई गुना आगे हो, तो किस पद का अहंकार, इस यज्ञ में आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है, कौन कितने साल से है, कौन कहां रह रहा है, कौन किस पद पे है, वो निर्धारित नहीं करता, जिसकी स्थिति यहां आगे है वो यहां आगे है, जिसकी पवित्रता यहां आगे है वो आगे है, और जिसकी पवित्रता बार बार खंडित होती है, दमन है जहां पर सहज पवित्रता नहीं है, एक बहन आई थी हमारे पास, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, कई सारे डॉक्टर्स बदल दिए, ये डॉक्टर वो डॉक्टर ये डॉक्टर, डिप्रेशन की 4 गोलियां इधर 2 गोलियां उधर, कोई असर नहीं, किसी एक बहुत बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर को भी उसने दिखाया था, किसी आयुर्वेदाचार्य को, उस आयुर्वेदाचार्य की, डॉक्टर की, जो इतनी सारी उसके पास फाइलें थी उसमें एक उस डॉक्टर के नोट्स थे, उसमें लिखा था सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स डायग्नोसिस, दमित काम वासना। कौन लिख रहा है? बाहर का व्यक्ति। ये उसने डायग्नोस किया, उसका निदान ये था, शायद कॉलेज या बचपन के दिनों में जो भी इच्छाएं थी वो अचानक ब्रह्मा कुमारी बनने के वजह से सारी दब गई, पर रही वैसे के वैसे। उनका उदात्तीकरण, पवित्रीकरण नहीं हुआ, स्पिरिचुअलाइजेशन, सब्लिमेशन, अध्यात्मिकरण नहीं हुआ, इसलिए वो वैसी रह गई। और उसी ने फिर डिप्रेशन का रूप धारण किया, ऐसा डिप्रेशन जो कोई भी दवाई काम नहीं करती, उदास लगता है उठते ही। अभी अभी एक बहन आई थी सेंटर की, कह रही थी, हम लोग इतना स्ट्रेस में हैं कि कोर्स कराने की भी शर्म आती है। क्या कोर्स कराए, खुद ही हम इतना टेंशन में हैं, लोगों को क्या बताया कि कैसे शांति को पाए। क्यों ऐसी स्थिति, क्यों दुख, कौन सी वेदना है जो सब कुछ सहा कर दिया, यज्ञ में संसार को छोड़ दिया, फिर भी दुख है। कह रही थी कैसे कोर्स करा है, समझ में नहीं आता है कभी कभी, कैसे मार्ग बताए संसार को। 30 साल से समर्पित, जरूर आकर्षण है व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, लौकिक परिवार का, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप का, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स में आकर्षण, टीचर अर्थात पढ़ा दे और बस, किसी से कोई लेना देना नहीं, पढ़ा दिया वो अपने घर हमें दर, उनमें ही फंस गए तो वो स्टूडेंट्स संसार में रहने वाले हैं, वो उधर क्या करते हमें पता नहीं। वो सारे कुमार जो आते हैं सब अच्छे हैं, पर रहते बाहर है, किस पर कितना विश्वास किया जाए ये भी प्रश्न है। इसके लिए टीचर अर्थात डिटैच्ड, वो सारी माताएं जिनको हमने ही किचन में आने की अनुमति दी, जिनको हमने ही लेके गए मधुबन बाबा से मिलाया, वही एक दिन खड़ी होकर हमारे ही विरुद्ध आवाज उठाती, जिन पर बहुत विश्वास किया वही कंप्लेन करती है। इसलिए सेंटर एक पब्लिक सेक्टर है, स्टेज है, कदम कदम पर सावधानी चाहिए। जो आ रहे हैं सबकी पालना करनी, प्यार से, मुरली से, टोली से, सब तरीके से, परंतु सबसे अलग, डिटैच्ड, बहुधर हमिधर। पहला वैदेही सीता को क्या हुआ? आकर्षण, स्वर्णिम मृग का। हमें ऐसा कोई आकर्षण तो नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति तो नहीं, किसी के, किसी कुमार के गुण तो नहीं, किसी भाई की सेवा की विधि पद्धति सहयोग साथ तो नहीं, ये हमारे सहारे नहीं बन सकते और ना ही हम उस पर विश्वास कर सकते। अनन्य से अनन्य भी धोखा देते हुए पाए गए। जिन बहनों ने, जिन स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा सेवा की, वही विद्रोह में, रिवॉल्ट में खड़े हो गए एक दिन। उन्होंने ही मांग की, इस बहन को निकाल दो, जिसके लिए कितना, किसके साथ इन्वॉल्व होना है वो भी एक प्रश्न है। संबंध हमारा केवल ज्ञान, योग और सेवा, बस स्टूडेंट के साथ इन तीन के ही आधार पर संबंध हो। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके घर की समस्याएं साक्षी होकर एज अ काउंसलर सलाह दे देना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। लौकिक घर में बहुत हलचल है, सलाहकार बनकर सलाह दे दी और डिटैच्ड, नहीं तो वो बीमार तो हम बीमार, वो दुखी तो हम दुखी, उधर कुछ हलचल तो इधर कुछ हलचल, उधर आर्थिक हलचल तो यहां पर हलचल, फिर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पहला आकर्षण। दूसरा, सीता ने सबसे पहले देखा और उसको आकर्षण हुआ। दूसरा, इच्छा हुई पाने की। सेकंड, डिजायर। सात अवस्थाएं हैं सीता के अपहरण की। दूसरा, डिजायर, मुझे मिल जाए, ये पद मुझे मिल जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये जगह मुझे मिल जाए, ये सेंटर मुझे मिल जाए। दादी जान की जब विदेश गई थी तो बहनों ने कहा था, दादी हमको स्थान नहीं है सेंटर के लिए, हम इसके लिए स्थान के लिए योग कर रहे हैं, कोई स्थान मिल जाए। दादी ने कहा, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? दादी ने क्या कहा था? टाइम वेस्ट कर रहे हो स्थान के लिए, जगह के लिए योग करना, ये कोई योग करने का कारण है क्या? उसको पता नहीं जगह चाहिए? हां, उस स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाने के लिए कर सकते हैं, परंतु चाहिए, इसमें चाह छिपी है, और जहां इच्छा है वहां दुख भी होगा, फिर अगर नहीं मिला तो। इसके लिए स्वयं को न्यूट्रल बिंदु पर रखना है, भले योग की भट्टी करो, सब करो, परंतु मिले तो अच्छा, न मिले तो भी अच्छा। झोपड़ियों में ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जहां बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए हैं परंतु अंतर कलह चालू है तो क्या फायदा है ऐसा रिट्रीट सेंटर का? स्थान बहुत बड़ा मिल गया परंतु अंदर झगड़े तो क्या फायदा है ऐसा रिट्रीट सेंटर का? उससे अच्छा छोटी झोपड़ी ठीक, जिसमें 10 लोग आते हैं, सभी धारणा युक्त। ऐसे स्टूडेंट्स लेकर हम क्या करेंगे? 1000 स्टूडेंट से क्या करना है? 10 स्टूडेंट भी हो जाए तो बहुत है। वो स्टूडेंट ज्यादा हो ये भी एक लालच है, वो स्थान बड़ा मिल जाए ये भी एक लालच है। मिले बहुत अच्छा, न मिले कामना नहीं करनी है, ये भी सूक्ष्म कामना है। सीता ने इच्छा की मुझे मिल जाए, उसकी इच्छा कोई गलत नहीं थी, अच्छा है, पक्षी पशु हिरन मिल जाए तो अच्छा ही है, घर ले जाऊंगी, अपने पिता को दिखाऊंगी, इतना अच्छा स्वर्णिम मृग कभी उधर नहीं था जनकपुरी में, अच्छी कामना है। तीसरा, जिद। एक है इच्छा, उसके आगे है जिद की। राम ने समझाया कि नहीं छोड़ दो, उसने क्या कहा? नहीं, मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, जिद करना चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए। यही बहन चाहिए, यही सेवाधारी चाहिए, उसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है सिद्ध। अपनी बात को सहज कह देना एक बात है, परंतु उसको सिद्ध करने की जब आवश्यकता पड़े तो जरूर अंदर कुछ न कुछ खोट है। सबसे बड़ा कलंक जो इस यज्ञ में लगाया जाता है या लगता है वो अपवित्रता का है। परंतु जो व्यक्ति अंदर से पवित्र है उसे कोई भय नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कहने दो, उससे सत्य नहीं, सत्य स्वयं सिद्ध है। असत्य के बादल सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकते। सत्य की नैया जो है वो हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं, और असत्य की हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा ही डूबेगी। इसलिए भयभीत नहीं होना, ब्लेम से, एक्यूजेशन से, दोषारोपण से सब होगा, सबसे गुजरना पड़ेगा। सिक सिक झुक झुक मरमर, जैसी वो घास होती है पानी के नीचे उगती है ऐसी खड़ी रहती है, इधर से पानी का बहाव इधर झुकती है, उधर से पानी का बहाव इधर झुकती है, इसी को कहा जाता है समर्पणमय जीवन। इधर और उधर लड़ाई नहीं करती, मुझे ऐसा कहा, उसकी यह हिम्मत, जिद, सीता ने जिद की मुझे चाहिए, दूसरे समझा रहे छोड़ दो पर नहीं मुझे चाहिए। चौथा धोखा, आवाज आई उधर से, थी आवाज मारिच की उसको लगा राम की है, थी आवाज माया की उसको लगा बाप की है, है तो वो माया परंतु दिखाई दे रही है श्रीमत, है तो वो कुमत परमत मनमत पर लग रहा है श्रीमत, सुविधाजनक श्रीमत, अपने हिसाब से उसको हम समझ रहे हैं, धोखा हो रहा है। आवाज किसकी और वो समझ किसकी रही है, रावण की आवाज और वो समझ रही है राम की है, क्योंकि रूप ऐसा है कि पता ही नहीं चलता। इस यज्ञ में माया जो है वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है और बैच लगा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि मैं माया हूं। माया श्वेत वस्त्र पहनती है, बैच पहनती है और ब्रह्मा भोजन भी खाती है, इसके लिए बहुत शक्तिशाली है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को माया ब्राह्मणों के द्वारा आएगी और ब्राह्मणों के लिए ये सारा परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है। एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है और सारा परिवार क्या है, परीक्षा गृह, एक एक सेंटर एग्जामिनेशन हॉल, और उसमें रहने वाली, साथ में रहने वाली एक एक आत्मा और बाहर से आने वाले स्टूडेंट सभी पेपर है। एक एक पेपर को पास करना पड़ेगा, चुन चुन के एक एक परीक्षा लेगा। जो लास्ट विद्यार्थी अभी अभी आया वो भी परीक्षा लेने के लिए तैयार है, वो भी किसी ना किसी दिन माया का रूप धारण ही करता है, जिससे हमें क्रोध आता है, आवेश आता है, इतना भी नहीं समझ में आता है तुमको, सब काम बिगाड़ दिया, तुम हो ही ऐसे, जब भी कोई सेवा दो हमेशा गड़बड़ करते हो, क्रोध तो दिला दिया ना, तो हमारे ज्ञान योग का भी क्या हुआ इतने सालों का, धोखा। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, ये छांटना ही ब्राह्मण जीवन है। ये श्रीमत, ये मनमत, ये परमत, टू सेग्रीगेट श्रीमत मनमत एंड परमत इस ब्राह्मण लाइफ। पांचवा, अविश्वास। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की कि मुझे नहीं लगता ये राम की आवाज है, उसने कहा नहीं तुम्हारे भैया की ही आवाज है, राम उनकी ही आवाज है, और उसे स्वयं यदि राम की भी है तो क्या उसे इतना विश्वास नहीं कि मेरे पति कौन है, क्या राम, क्या उसको कभी ऐसी अवस्था हो कि वो असहाय होकर पुकारेगा, क्या उसके सामर्थ्य पर उसका विश्वास नहीं। अविश्वास हुआ, जिसको जीवन दिया है क्या वो बाप, उसे नहीं पता हम किस अवस्था में किस स्थान पर है, क्या मेरे साथ बीत रही है, क्या वो नहीं जानता, क्या उस पर विश्वास नहीं? हमेशा हम बताते हैं जीसस क्राइस्ट का नाव से जा रहे हैं गलीली की झील में, 12 शिष्य साथ में है, अचानक आंधी तूफान आ जाती है, सारे शिष्य घबरा जाते हैं, जीसस सोया पड़ा है एक कोने में, इतने चिल्ला रहे हैं क्योंकि पानी अब नाव के अंदर घुसने लगा है, नाव डूबती जा रही है, भयंकर तूफान और आंधी, और शिष्य घबरा रहे, भाग रहे, यहां वहां हो रहे, और फिर उसको जाकर उठाते, उठो हे मालिक, उठो, वेक अप ओ लॉर्ड, सेव अस। दिखाया जीसस क्राइस्ट उठता है और हाथ करता है, पीस बी स्टिल, शांत शांत और शांत, और वो पूरा बादल, वो पूरा मौसम शांत हो जाता है, आंधी रुक जाती है। तब वो अपने शिष्यों से कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालों, क्या इतना भी विश्वास नहीं है? जिस नैया में मैं बैठा हूं क्या वो डूब सकती है? क्या इतना भी तुमको विश्वास नहीं है? किस नाव में बैठे हो? कौन है तुम्हारे नाव में? मेरे होते हुए क्या तुम डूब सकते हो? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, क्या यही तुम्हारा विश्वास है, निष्ठा है, श्रद्धा है, ईमान है? जिस नैया में हम बैठे हैं उसका केवैया वो है, वो केवट है, वो डूबने नहीं देगा। खाली हम भूल जाते हैं कि नाव कौन चला रहा है, उसके सामर्थ्य पर, शक्ति पर अविश्वास, और फिर किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं और किसी व्यक्ति को आधार बनाते हैं, और फिर अपनी समस्याएं किसी व्यक्ति को सुनाते हैं, मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा, और सब कुछ उसको बताने की आदत, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इधर ज्यादा बताओगे तो उधर बताना कम हो जाएगा, संसार वालों के साथ ज्यादा शेयर करोगे तो ऊपर शेयर करना आप ही कम हो जाएगा। अविश्वास छठवा, रावण को परख न पाना, क्योंकि रावण किस वेश में आया? साधु के वेश में आया, परख ही नहीं पाई वो, उसको लगा कोई साधु है। रावण कभी भी लिख कर नहीं आता है कि मैं रावण हूं, हर बार रूप बदलता है, बहुरूपी है। हां अगर सीता को चुरा के ले गई, अगर सीता वापस भी आ जाए उसी वाटिका में, तो अगली बार अगर रावण आएगा तो वो रूप से नहीं आएगा, वो साधु के, कोई दूसरे रूप में आएगा, तीसरे रूप में। हर बार रूप बदलता है, बहुरूपी है माया, हर बार नए नए रूप में। परख लेना की ये माया है, उसके लिए बुद्धि कितनी जागृत चाहिए, एकाग्र चाहिए, कितनी ज्ञान और योग में डूबी हुई चाहिए। सुबह सुना ना बाबा ने क्या कहा वरदान में, ये जो परमात्मा प्रेम है यही योग है, और इस प्रेम में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। कैसी अद्भुत परिभाषा दी है ज्ञान और योग की। वैसी अगर बुद्धि समाई हुई नहीं है तो व्यक्तियों में जाएगी और माया को हम परख नहीं पाएंगे। रावण को न परख पाना, और लास्ट सेवेंथ, लक्ष्मण रेखा पार कर जाना। लक्ष्मण रेखा पार की और रावण उठाकर शोक वाटिका में। कौन सी रेखा है? नियमों की, मर्यादाओं की। जितना हो सके उतना एकांत में और अकेले में किसी से बात न करना। युधिष्ठिर से पूछा जाता है महाभारत में, जब तुम्हारी मां कुंती होती है बैठी, क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? युधिष्ठिर, भीम नहीं, अर्जुन नहीं, नकुल सहदेव नहीं, युधिष्ठिर धर्मराज, वो कहता है आई एम नॉट श्योर। हमारे पास ओपीडी में जैन साध्वी आती है, बहुत सारे मठ है वहां पर माउंट में, अगर कोई पुरुष वहां 45 मिनट्स पहले बैठा है तो वो नहीं बैठती वहां, खड़ी खड़ी रहेगी, बैठेगी नहीं, वेट करेगी वाइब्रेशंस। कितना ख्याल है उसको, क्यों ऐसे नियम बनाए हुए हैं इतने कठोर, क्योंकि गिरते हुए देखा है लोगों को। सन्यासी के लिए गायन है, कहा जाता है यदि कोई स्त्री जमीन पर ईश्वरीय प्रेम में तड़प रही है, इसलिए तड़प रही है कि भगवान उसे मिल नहीं रहा, फिर भी एक सन्यासी उसको ना देखे, नासिकाग्र दृष्टि। ऐसे ऐसे नियम बनाए हुए हैं। क्या हम देख रहे हैं टीवी, मोबाइल, वीडियोस? पांच विकार पुरुष के हैं तो पांच विकार स्त्री के भी है, पांच विकार स्त्री के हैं तो पांच विकार पुरुष के भी है। आग इधर नहीं लगी पर उधर तो लग सकती है, हमारा कोई दोष नहीं है, पर आग उधर भी लगेगी अगर इधर से साथ मिला तो। इसलिए स्वयं को नियमों में बांध के रखना ही सेफ्टी का साधन है। पवित्रता पर कलंक, जब हमारा कोई दोष नहीं फिर भी, परंतु लोकपवाद का सामना करना पड़ता है, जब निंदा, और वो होता तब है, हमारा दोष नहीं परंतु फिर भी हमने कुछ ऐसा किया है जिससे ये अवसर खड़ा हुआ है। जरूर सूक्ष्म में किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन किया है। इसलिए एकांत में मिलना, एकांत में बातचीत करना, वो जो डिस्टेंस है बैठने का, वो इतना नजदीक ना हो, वो उधर हम इधर, साथ में कोई हो तो बहुत अच्छा, कोई माता या कोई भी या बहन। संसार विकारी है, घरों में बैठ के वो लोग क्या देखते हैं हमें नहीं पता। हम इस पवित्र वातावरण में यहां आते हैं तो वो पवित्रता दिखाई देती है उनकी भी, पर वहां जाने के बाद कौन क्या करता है इसका कोई भरोसा नहीं। इसके लिए गुप्त वार्तालाप, लंबा लंबे समय तक बात, मोबाइल में लंबा समय तक बात, मोबाइल में व्हाट्सएप के द्वारा बहुत अधिक कम्युनिकेशन, बात बात पर डिस्कशन, बात बात को शेयर करना, ये है तो बहुत अच्छा सेवा की दृष्टि से, हाँ, परंतु जहां आवश्यकता ही नहीं है उसको नहीं करना है। जितना हो सके स्वयं को सुरक्षित रखना, क्योंकि उस मार्ग में अगर चले गए तो वहां जो निंदा होती है उसके प्रभाव से निकलना बहुत मुश्किल है। कितने लोग आते हैं हम देखते हैं, वहां कुछ हो गया, मधुबन आए, मधुबन में एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी कुछ हो गया, फिर वहां से भी निकाले, फिर उधर, फिर वहां से भी निकल के कहीं और अभी सुना घर में है। कितने सारे, एक नहीं कितने, क्योंकि स्वभाव में चंचलता है, स्वभाव में एक ऐसा संस्कार है बात बहुत करने का भाइयों से, उनके साथ में हिलना मिलना घूमना, उनके सामने इच्छाएं प्रकट करना। अरे वो तो हमने देखा ही नहीं, वो कहेगा चलो मैं तुमको दिखाता हूं, चलो हमारे पास गाड़ी है, अरे हमने तो वो खाया ही नहीं, अच्छा आज आपके लिए हम वो बना के बेचेंगे। ज्ञान योग रह गया बाजू में, भोजन और घूमना, बस यही चालू है। जगदीश भाई ने कहा है, सेंटर ऐसा हो कि किसी विकारी का पैसा उसमें ना लगना लगे और सेंटर की दीवारें किसी भी विकारी की दीवार को स्पर्श ना करे। नहीं मिला सेंटर चलेगा, किराए में है चलेगा, छोटा है चलेगा, पर किसी के चापलूसी करना पड़े, चाटुकारिता करना पड़े, आगे पीछे घूमना पड़े, वो सब बाबा को स्वीकार नहीं है और ना ही हमें। नहीं चाहिए तुम्हारा, जगह भी नहीं चाहिए, ना तो तुम्हारा रिट्रीट सेंटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यही ठीक है। स्वाभिमान से जीना, इसमें आनंद है। अधीनता से जीना, इसमें दुख है। एक कहीं किसी जगह पर एक भाई है, सहयोगी है, ज्ञान में थोड़ा बहुत था, पर बहुत बड़ी जमीन दे दी है, वहां कुछ बन भी रहा है, परंतु आता है तो ऐसे डांटता है सबको और कोई कुछ नहीं कर सकता, बस आगे पीछे घूमने पड़ता है उसके, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन दे दी है, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ किया तो सारी बहनों को बिल्कुल ऐसा डांट देता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्रोध भयंकर, और ज्ञान बहनों को ही समझाता है, थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ की उनको ज्ञान सुनाना चालू करता है। मुरली में कभी नहीं आएगा, पर मुरली की वो बातें पढ़ के आता है जो इनको सुनानी है। छोटे मोटे सेवाधारी को तो ऐसे कि जैसे नौकर है, कितने सारे तो छोड़ के चले गए सेवाधारी, बेचारे भावना से आते हैं सेवा करने, पर कब तक सुने किसकी डांट। कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी बड़ी जमीन, काम चल रहा है, चलो एक रीति से यह भी ठीक है, सहन कर रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा बहुत बड़ी सेवाएं होने वाली है बाद में उस स्थान पर, परंतु ये सब करने की हमें आवश्यकता नहीं। उसको पता है ना, भगवान देख रहा है, उसका घर है, वो करेगा सब, पैसे चरणों में आकर गिरेंगे, मांगने की जरूरत नहीं, जमीन चरणों पे आकर गिरेगी, मांगने की जरूरत नहीं, महल खड़े हो जाएंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं किसी से। मर्यादा का उल्लंघन, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और सीता शोकवाटिका, पल पल है भारी, है विपदा है आई, क्या ऐसी विपदा तो नहीं आई हमारे जीवन में। सात बातें बताई, पहला आकर्षण, दूसरा इच्छा, तीसरा जिद, चौथा धोखा, पांचवा अविश्वास, छठवा परखा नहीं, और सातवा लक्ष्मण रेखा। 3+2+2, पहले 3 फिर 2 और फिर 2।